गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अभी आपको श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहं सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का यह गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है जैसे मान दाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से प्रुंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया, ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। तो ये ब्रह्म बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इन सब का पिता है और दुर्गा इन सब की माता है। अब ये तो कह रहे हैं आदरणीय शंकराचार्य और सारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन कहते हैं कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही की पूजा करो, सर्वेश्वर महेश्वर है। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता हूं दुर्गा की, और इस तो ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, ये इनका स्पिरिचुअल नॉलेज इनके गॉड का भगवान का है जिसको ये पूज रहे हैं। दुर्गा कह रही है हिमालय को श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे कि केवल उस ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, उसका ओम नाम है, ओम नाम के जप से उसकी प्राप्ति होगी, उस ब्रह्म को पा जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। और ये ब्रह्म क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसकी साधना करने से ओम से जो होने वाली परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। कहां जाएंगे? ब्रह्म लोक में। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावर्ती में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा, देखिएगा। अब ये तो आपने अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 अभी पढ़ा था, पहले भी फिर देख लेते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहं सयाति परमाम गतिम। ओम ओम एक अक्षर, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल यह एक अक्षर ओम है। ओम का इन्होंने अनुवाद ऐसे किया है, ऐसे कहो तो ऐसे लिख लो, एक का बात है। तो उसकी परम गति होती है जो ओम नाम के सत्र की, वो कहां जाता है? ब्रह्म लोक में चला जाता है। जैसे अभी आपने श्री देवी पुराण में पढ़ा कि श्री देवी जी कहती हैं कि तुम ओम नाम का जाप कर और उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म लोक में चला जाएगा। अब ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर पुनरावर्ती में आते हैं, देखिएगा। ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखना, इन्होंने स्टार लगा रखे पुनरावृत्ति का, यहां परिभाषित किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। ब्रह्म लोक तक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं उनमें जा गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होती है। और ये स्वयं भी स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ब्रह्म इनकी पूजा करने वाला भी जन्म मृत्यु में बना रहा तो परम शांति नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का किसको, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय का ये प्रथम मंत्र है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित। अब ये क्या बताया है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल आले ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। अध शाखम नीचे को शाखा, ये अनुवाद गलत किया है ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला। देखिएगा इस दो नंबर श्लोक में अध दो जगह है, इनका अनुवाद इन्होंने खुद किया है। यहां पर अध माने नीचे, तो अध यहां नीचे लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को मूल वाला। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और नीचे को शाखा है, ये समझो। इसकी तरफ संकेत है ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वतम प्रहु अव्यम। ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। अब तीनों गुण यहां देखिएगा, अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, बिल्कुल स्पष्ट है अध शाखम। इन्होंने तो अड़ंगा डांड तो मतलब था, ज्ञान था ही नहीं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित तत्व से जानता है तो वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला था, तो वो तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये, और फिर हम ज्यादा ना कहकर हम सिर्फ ये लेंगे कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार को समझकर इसका नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखिएगा यहां से लेंगे क्या लिखा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपता समझो उसकी विषय वासना वाली शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में। कर्मों के अनुसार बांधने के भी मुख्य कारण यही है, जो नीचे और ऊपर लोकों में फैली हुई है, ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब ये तीनों गुण रूपी शाखा है। तीन गुण क्या है, रजगुण गरिमा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। देखिए मार्कंडेय पुराण प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, 122 के नीचे आएंगे फिर साथ में इधर 23 है। अब मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहां जाते इसके सामने ही, इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब फिर पढ़िएगा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-2 से आगे, एक तो पढ़ लिया आपने, अब दो को देखिए। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता नंबर 2 में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया था कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देता है सवेदवित वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सर पुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। तो वो थे भगवान जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते ही आते हैं, वो ज्ञान वही समझाते हैं। तो ये बताया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहेब हैं, ये कबीर साहेब हैं। और अक्षर पुरुष ये तना है, सर पुरुष ये डार है, इसके तीन पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है और पात्र रूप ये सब यहाँ के तीनों लोकों के प्राणी है। अब आपके ये पवित्र श्रीमद भगवद गीता जैसा पवित्र सदग्रंथ समझ में आवेगा। अभी तक तो इन्होंने अज्ञान बना रखा था, सबको श्री कृष्ण को ही बना रखा था यानी विष्णु जी को ही। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 हमने पढ़ रहे हैं। हम उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये जल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा ये तो शाखा है नीचे और ऊपर फैली हुई है यानी तीन लोकों पर पाताल लोक पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर इन भगवानों का आधिपत्य है। एक एक गुण का एक एक विभाग के मंत्री हैं ये और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण मुख्य जड़ें यानी ये हमें अमान दे रखती हैं फंसाए रखते हैं। नीचे और ऊपर फैली हुई है सभी लोकों में नहीं ऊपर और नीचे फैली है। अब तीसरे में कह गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता, मुझे इसके आदि और अंत का स्थिति का कोई ज्ञान नहीं। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का तीसरा ये क्या कहता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं गीता ज्ञानदाता कहता है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम मूल कौन है परम अक्षर ब्रह्म रूप के लोक वो तो अविनाशी है शूद्र अति दृढ़ है और नीचे के अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम इस पीपल के वृक्ष को संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ेन दृढ़ असंख शस्त्रेण वैराग रूप नहीं तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उस तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उसको अच्छी तरह समझकर अब चौथा मंत्र में जाएगा चौथा उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए सात पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है सारे ब्रह्मांडों की रचना की है उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं आदम पुरुषम। उसी आदि पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है उसकी शरण में हूं इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का पर्वतेवा ने पूजा करनी चाहिए। ये तो अपनी अटक लड़ाते हैं जैसा ये करते हैं ध्यान दोन पर्वतेवा ने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता कोई और है वो पूज्य पुण्यात्मा। सुबह के सत्संग में विषय था कि तीन परमात्मा मुख्य रूप में तीन पुरुष सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां पर जो परम अक्षर पुरुष है हम उसकी तरफ संकेत करते हैं कि वो है वो पूज्य, वो कौन है, स्वयं कबीर भगवान है, कबीर देव है, जिसने 600 वर्ष पहले आकर वो लीला की थी जो वेद बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाकर दास उस प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे, ये 32। इस प्रकार यानी 25 से लेकर 31 तक इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मण मुखे, या गलत कर दिया ने वेद की वाणी, देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मण माने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहाँ ओम ओम तत् तत् सत सत, ये दो सांकेतिक शब्द है दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यहाँ ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य है। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनरच कर दिया, इस ब्रह्मणे शब्द है ब्रह्मणे मुखे एवं विभोविदा, इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वितिता माने विस्तार पूर्वक ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहां देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है गीता ज्ञान दाता ने, उस ज्ञान को वो तत्व ज्ञान है जो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी ने, तत्वदर्शी ने माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञान दाता कहता है सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा सार्वजनिक है, तत् और सत सांकेतिक है इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय ये छोड़ दिया, वो इस दास को पता है परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी भांति जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों के संसार रूपी वृक्ष की पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका ही सिद्ध अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ। अपने आत्माओं, ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है। ये उसको समझ नहीं सके, दास समझ गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठी करने में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तेन की हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी, जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहां से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं केएस नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया, प्रेमचंद्र उपाध्याय प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था और दो चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है, ये इन्हीं पत्रों में ये है, यहां पर लिखा है इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक तो एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहां पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। तो पुण्यात्माओं, एक भक्त जो वहां गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे, तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य, उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहां के व्यक्ति बता रहे थे और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा, ये है वर्तोत्सव प्रो निर्णायक पत्रिका, ये उन्होंने कोई छापी है। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गोमाता की जय हो, श्री हरि, ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर, ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये वो अपना अधिकार मानते हैं उस पर, ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय श्री कृष्ण बौद्ध धाम सात शंकराचार्य मार्ग सिविल लाइन दिल्ली चम्मन से यह यहां छपी है। और इनका भगवान कौन है ये इनके भगवान देखिएगा। समाचार पत्र पंजीकृत धर्म सम्राट ये नाम कोई है इनका। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज बद्रिकाश्रम हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ ये इनके पूज्य देवता हैं। भगवान राम परिवार अब न्यो कह है वो वहां के लोग कह रहे थे कि इसने श्री माधव आश्रम जी ने इसका नाम है आदरणीय शंकराचार्य का माधव आश्रम जी महाराज इन्होंने स्वरूपानंद जी को रा दिया और पूजा इन किया है ये इनके भगवान। इन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी इन तीनों देवताओं की पूजा श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर मना किया है साथ में जाए कि 10 से लेकर 12 और 20 से लेकर 23 के श्लोक में वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। और ये उन्हीं की पूजा करते हैं तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका आपको सत्संग मिला इस बरवाला आश्रम में। पूरे विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा बताते हैं मात पिता मिल जाएंगे लख 84 सतगुरु सेवा और भक्ति या फिर मिलन की ना। परमात्मा स्वयं आकर के हमें जगाते हैं। हम मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। वो परमपिता परमात्मा दयालु भगवान हमें आकर के याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम बिन उपदेश अचंब है ये क्यों जीवत है प्राण भक्ति बिना कठोर है वो नर ना ही पाषाण अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे राम रटत कोडी भला चू चू पड़े जो चामे ये सुंदर शरीर किस काम का जामुख नाही नाम राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान राम रटत कन्या बली साकेट भलो न पूत जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत हमारे परमात्मा ने हमारे पिता ने हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो और जिन इन संसारिक सुखों को आप सुख मानते हो, ये झूठा सुख है, ये अस्थाई है। आप जी को यहां रोके रखने के लिए आपको इतना विवश कर दिया इस काल भगवान ने, अपने तीनों पुत्रों को ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी और शिव लोक में शिव जी, लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग वो हमें प्रभावित कर रही है यहां बैठों को। इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत तीन लोक आते हैं, ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक। इन तीन लोकों में प्राणी हैं और इनसे बाहर के जो प्राणी हैं वो इनकी रेंज से बाहर हैं, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन तीन लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं, इनकी इतनी रेंज है वहां तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है तो वो मूल वस्तु, जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है, उसका छोंक लगा, उस छोंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में, दूसरे कक्षों में पहुंची और वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींकें ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त है, जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया, अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है, तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं, और ब्रह्मा कहो चाहे इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर आपको यहां रोक रखा है। अपने आत्मा आप बहुत भोले हो, बालक हो, इस भगवान के मार्ग में, और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती, वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो, जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता, जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक डेढ़ दो वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है, तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहां ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है, उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। वे वहां उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो वो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहां से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की मां को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कई जो कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गायें बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं, कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है बकरों को, हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से, वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मास्टर्ड गैस का ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं, बड़ा नेक आदमी है, और वो एस्टीमेट लगा लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुरा का पैन पोसा का यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराक का और पैर पोसा का, या यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके छह सदस्य यानी टोटल कुल के कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में, एक बुड्ढा बच गया। और हम कई जगह देखते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया था गुजरात के अंदर, और सभी व्यक्ति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भारत का मनाने के लिए तैयार थे। सन 2000 की बात है, 26 जनवरी की। ऐसा भयंकर भूकंप आया, 26 जनवरी की छुट्टी थी, कर्मचारी अधिकारी सब अपने घरों पर टेलीविजन के सामने बैठे थे कि आज अपने गणतंत्र दिवस की झांकी देखेंगे। ऐसा भयंकर भूकंप आया, जिन मकानों को, कोठियों को, संपत्ति को बनाने में सारा जीवन नौछावर कर दिया, उन्हीं कोठियों के नीचे दबके पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। पुण्यात्माओं, इस काल ने आप और हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखे हैं, तीनों गुणों का तीन इंजेक्शन लगा रखे हमारे, ये लगे ही रहते हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर बना ही रहता है कंटिन्यूसली, तो उसके कारण हम इतने प्रभावित हैं कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। अब विचार करो, जो व्यक्ति उस भूकंप में मर गए या दुर्घटना में मर गए, वो कौन सी क्रियाएं क्या करते थे, उनके क्या उद्देश्य थे, उनकी कितनी इच्छाएं थी, और हमारी क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कर क्या रहे हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी बात नोट कर आई थी, पांच लड़कियां थी जिनमें से तीन का विवाह इकट्ठा ही था, तीन बेटियों का विवाह हो तो उस समय इस मनुष्य के माइंड की नीडल या सुई 100 से नीचे नहीं रहती, कभी उधर सोचा ये करूंगा वो करूंगा, चिंता ये बनाई रखी हमारे साथ इसने लगाई रखा है। बस की बात नहीं, हमारी परंपराएं ऐसी बन गई जो हमें केवल दुख ही देती हैं, सुख नहीं देती। विवाह के अंदर भात नोत का आना, फिर एक विवाह फिर उन भाइयों का शुरू हो जाता है, एक बहन का शुरू हो रहा है, तो इस तरह हम अपनी परंपराओं को, रीतियों को गलत बनाकर भी 90% दुखी हैं। अब वो रोहतक बस स्टैंड पर खड़ी थी, एक बस से उतरी थी, दूसरी का इंतजार कर रही थी, और खड़ी खड़ी सोच भी रही थी, क्योंकि जिसके तीन बेटियों का विवाह हो, जो अनुपदेशी है, हमारे भगत तो अब इस बीमारी और बुराई से कति दूर हो जाएंगे, ज्ञान से होंगे, कोई प्रतिबंध से नहीं होती ये बातें, बच्चों का विवाह भगवान ने कर रखा होता है, या हमारी भूल है, बाद में जो ड्रामाबाजी, नाचा कूदी, डीजे बजाना, फंड करना, ये कोरी बकवाद है, ये इस विवाह के समय में, इतने पुण्य संयोग के समय में ऐसे बकवाद नहीं करनी चाहिए, कोई घूटी ला रहा है, कोई नाचे कूद है, ये कोई बात हुई, ब्याह किसी का नाचे कोई, ये कोई सांग होया, कोई अकल हुई, लड्डू कोई खावे और कूद कोई, बता कोई बात है या? तो इस तरह की हम अज्ञान से अपने ऊपर एक न्यारा वजन और रखे बैठे हैं, ये भी हटाना, हमने बिल्कुल हटाना पड़ेगा। भक्ति तभी चलेगी, भगत तभी बनेंगे। अब वो पता नहीं क्या क्या विचार कर रही थी, वहां ऐसे करूंगी, ऐसा करूंगी, वो ऐसा लाना है, वो फलाना ऐसा करना है, लड़की के कपड़े बनवाने हैं, यानी सो चिंताएं होती है। वहां पिलर के साथ खड़ी खड़ी ऐसे ही चिंतन कर रही थी, कहीं और घूम रही थी, खड़ी थी वहीं पर, एक ड्राइवर ने बस बैक करके सेट करनी थी अपने स्थान पे, कंडक्टर लग गया खुले पैसे देन, किसी के बकाया थे वो बकाया पैसे, ड्राइवर ने सोची तू लाग फटाफट बस को, उसने बस बैक करी हुआ, ज्यादा टेढ़ी होकर पिलर की सीधी होगी, उसने दिखा नहीं दूसरी साइड में, वो पीछे जाकर, और उस बहन ने भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो सोच विचार में बड़ी थी, उसकी छाती पा कर लगी बस पाछे तर, पीछे पिलर का सारा खड़िए थी, वहीं पर आध घंटे में तड़प कर मर गई। अब वो ब्याह भी रह गया, और जो इधर उधर की जो एक सेकंड का चैन नहीं था, अब वो कहां गई, तो पुण्यात्माओं, हम कति बालक हैं, हमें डर नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा वो जाने का समय, और जब तक हमें यहां से जाने का समय याद नहीं रहेगा हम भक्त नहीं बन सकते, हम बुराई से बच नहीं सकते। अब आज कोई नाच रहा है, कूद रहा है, एक समाचार पत्र के अंदर देखा पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि विवाह था और पहले दिन वो डीजे मंगाकर नाच रहे थे, बहन भी सब दूसरे भाई रिश्तेदार डांस कर रहे डीजे के ऊपर, वो भी समाचार पत्र में। और अगले दिन वो दुल्हा जो विवाह करने चला था, कार एक्सीडेंट हो गया ट्रेले के साथ में, जितने सदस्य उसके साथ बैठे थे व्यक्ति वो सारे मर गए, वो भी मर गया। अगले दिन वो टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, बालों को पाड़ रहे हैं जो कल नाच रहे थे। अब बजा लो डीजे यहां पर। कहते हैं नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विद डल जा पासावे, और जिन आते सिरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। आदरणीय नानक साहिब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी भी खुश नजर नहीं आते, ना कोई त्योहार और तीज मनाते। तब उन्होंने कहा था भाई ना जाने यहां क्या बिजली गिर जा एक पल में, और हमने तो अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए रुचि नहीं बनती इन नाचन और गावन में, यहां की नकली खुशी मनावन में कति दिल नहीं मान नहीं मानता। ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, अर्जिन आते सिरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे जी रहे हो। तब उन्होंने बताया कि मैं प्रसन्न होता हूं साध मिलने साढ़ा साधी होंदी, विछड़ दया दिलगीरी वे अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त मेरी साध संगत यहां आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता, वो हमारे साधी है, वो हमारी खुशी है। और जब ये वापस जाते हैं संसार में यहां से, तो फिर मुझे दिलगिरी होती है, बहुत परेशानी दुख हो जाता है, चिंता लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चों को जिनको मैंने मुश्किल से मार्ग पर लाया है, सत्य बताया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान समझाया है, कहीं कोई काल, क्योंकि संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं है, एक अकेला एक संत होता है जो सत्मार्ग देता है, असंतों की गिनती नहीं होती, उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहिब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़ा साधी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ दया दिलगिरी वे, जब ये यहां से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अख दे नानक सुनो जिहाना, ना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयां कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है, और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं, देखो इन्होंने तो माता दोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, हैं? इन्होंने तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना ओली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, एक वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताओं का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया, 10 वर्ष हो गया हमने त्योहार नहीं मना लिया।